पृष्ठ संख्या 510, नंबर 5, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, एनफोर्समेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। भूमि सुधार दरिद्रता उन्मूलन रणनीति एवं कृषि के उपज को बढ़ाने एवं इसके आधुनिकीकरण में प्रमुख भूमिका रखते हैं। कृषक को भूमि सरकार का लक्ष्य रहा है। भूमि अभिलेख सभी भूमि सुधार उपायों का आधार है। 7वीं योजना में भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने एवं राजस्व संयंत्र को सशक्त करने हेतु एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना का आरंभ किया गया है। भूमि सुधारों का एक प्रमुख प्रोग्राम फालतू भूमि को वितरित करना है। एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के प्राप्तकर्ताओं के भूमि विकास हेतु 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता दी जाती है। यह व्यय केंद्र राज्यों द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है। कृषि भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में कानून अनेक राज्यों में 1950 एवं 1966 के दशकों में आरंभ किए गए थे। इन कानून में अनेक दोषों के कारण उनको प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। मार्च 1987 तक 77.75 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई थी, जिसमें से 58.36 लाख रुपए को कब्जे में ले लिया गया था। केवल 45.38 लाख एकड़ वितरित की गई थी। शेष 28.35 लाख एकड़ अनेक कारणों यथा मुकदमेबाजी, कृषि हेतु अयोग्य, सार्वजनिक कार्यों हेतु आरक्षण आदि में वितरित नहीं की गई। मुकदमेबाजी में फंसी हुई भूमि को तुरंत मुक्त कराने के बारे में कठोर कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता है। 1986-87 वर्ष के लक्ष्य 0.8 लाख एकड़ के विरुद्ध उपलब्ध 0.58 लाख एकड़ दिसंबर 1987 तक रिपोर्ट की गई। क्रम संख्या 6, ग्रामीण श्रमिक हेतु प्रोग्राम, प्रोग्राम फॉर रूरल लेबर। ग्रामीण कृषक के लिए न्यूनतम मजदूरी, केंद्रीय सरकार 42 रोजगारों एवं राज्य सरकारें 21 रोजगारों के बारे में प्रत्येक 2 वर्ष उपरांत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 50 बिंदु ऊंचा हो जाने पर न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करती हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एवं मणिपुर में न्यूनतम मजदूरी को लागू करने हेतु प्रवर्तन संयंत्र को सशक्त बनाने के लिए मार्गदर्शी आधार पर 1984-85 में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम आरंभ की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे खंडों में जहां अनुसूचित जातियों जनजातियों से संबद्ध कृषक मजदूरों को जनसंख्या 50% अथवा अधिक है, 200 ग्रामीण मजदूर निरीक्षकों की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन असंतोषजनक रहा है एवं खंड तालुक स्तर पर सशक्त प्रवर्तन संयंत्र अवस्थित नहीं है। यह आवश्यक है कि न्यूनतम मजदूरी को समय समय पर संशोधित किया जाता रहे, ताकि असंगठित ग्रामीण श्रमिकों को इसके संशोधन न मिल जाने से हानि न हो। न्यूनतम मजदूरी कानून में भी संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि इसका उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिया जा सके एवं प्रभावित व्यक्ति अथवा श्रमिक समितियां, स्वयंसेवी संगठन ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकें। स्वयंसेवी संगठनों को संलग्न एवं प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि असंगठित श्रमिकों को कानून के अधीन उपलब्ध अधिकारों की जानकारी हो सके। पृष्ठ संख्या 511, बंधुआ मजदूर का पुनर्वास, रिहैबिलेशन ऑफ वॉन्डेड लेबर। बंधुआ मजदूर प्रणाली समाप्ति कानून 1976 के प्रभावी क्रियान्वयन में बंधुआ श्रमिकों की पहचान, उनकी मुक्ति एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निहित है। 1978-79 के प्रारंभ केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन इस कार्य के कुल व्यय का 50% केंद्र से सहायता के रूप में मिलता है। फरवरी 1986 से पुनर्वास हेतु कुल सहायता राशि 6,250 रुपये प्रति बंधुआ मजदूर है। इनमें से 500 रुपये लाभोक्ता को तुरंत मुक्ति पर तुरंत दे दिए जाते हैं। जिलों एवं उपमंडल स्तर पर इस स्कीम के क्रियान्वयन की देखभाल करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों की चौकसी समितियां गठित की गई हैं। बेसूत्री प्रोग्राम के अधीन स्वयंसेवी संगठनों को इस कार्य में संबद्ध रखने हेतु श्रम मंत्रालय ने स्कीम तैयार की है, जिसके अंतर्गत ऐसे राज्यों जहां समस्या गंभीर है में बंधुआ मजदूरों की पहचान के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सहायता ली जाती है। इस प्रोग्राम के संतोषप्रद क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों द्वारा अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। 31 नवंबर 1987 तक 2,22,691 बंधुआ मजदूरों की पहचान की जा चुकी थी तथा उन्हें मुक्त करा दिया गया था। इनमें से 1,93,202 का पुनर्वासित कर दिया गया है। 1987-88 में 18,202 बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लक्ष्य के विरुद्ध दिसंबर 1987 तक 10,273 को पुनर्वास किया गया। नंबर 7, शुद्ध पेयजल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। 7वीं पंचवर्षीय योजना में संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था को विचरित किया गया है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को राज्य योजनाओं में न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम में भी सम्मिलित किया गया है। इस प्रोग्राम में सर्वप्रथम 6ठी पंचवर्षीय योजना के अधीन जारी समस्याग्रस्त देहातों, जिनकी संख्या 39,000 को प्राथमिकता के आधार पर तथा अन्य देहातों जिनकी पहचान बाद में की गई 31 मार्च 1985 तक में पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था करना है। पृष्ठ संख्या 512। जल आपूर्ति की व्यवस्था हो जाने के बाद आपूर्ति प्रणाली को ठीक प्रकार से देखभाल करना आवश्यक है, ताकि ग्रामीण जनसंख्या को बिना किसी अवरोध के निरंतर जल उपलब्ध होता रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों एवं अन्य सहयोग एवं उनकी सहायता प्राप्त करनी होगी। स्थानीय समुदायों को सुनिश्चित करना होगा कि जल स्रोत ठीक अवस्था में रहें तथा उन्हें किसी प्रकार की हानि न हो। यदि उनमें कोई दोष हो जाता है तो उसे तुरंत दूर किया जाए। इस कार्य के लिए प्रशिक्षित यौगिकों की आवश्यकता होगी। न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम के अधीन ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली की देखभाल एवं क्रियान्वयन हेतु गैर योजना पक्ष पर योजनागत व्यय का 10% आवंटित किए जाने की व्यवस्था है। ऐसा अनुभव किया जाता है कि एक स्तरीय देखभाल प्रणाली, जिसमें पंचायत स्तर पर रख रखाव की नियुक्ति की जाती है, कुछ एक क्षेत्रों में सफल सिद्ध हुई है। रख रखाव को ट्राइसेम प्रोग्राम के अधीन प्रशिक्षित करना होगा। उसे आवश्यक यंत्रों एवं फालतू पुर्जों से सज्जित करना होगा। नंबर 8, सबके लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल। भारत सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य प्रति एवं जनसंख्या स्थिरीकरण विशुद्ध प्रजनन दर ऑफ यूनिटी द्वारा प्राप्त करने के प्रति कटिबद्ध है। यह 1985 में अंगीकृत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एवं 7वीं पंचवर्षीय योजना में घोषित किया गया है। सर्वमुखी स्वास्थ्य विकास प्रोग्राम के मुख्य बल स्वास्थ्य सेवाओं के अवरोधात्मक एवं उन्नयनकारी पक्षों तथा प्रभावी एवं सुदक्ष सेवाओं पर जो स्वरूप में व्यापक उपलब्धता में सुगम एवं सामान्य जनता द्वारा सहनीय हो पर बल दिया गया है। प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र हैं रोमन का नंबर 1, समुचित सशक्त संरचनात्मक सुविधाओं द्वारा समर्थित प्राथमिक स्वास्थ्य उपायों को बेहतर बनाना, रोमन का नंबर 2, स्वास्थ्य संबद्ध सेवाओं एवं गतिविधियों यथा पोषाहार, शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता के साथ समन्वय, रोमन का नंबर तीन, स्वयंसेवी संगठनों का क्रियान्वयन सहयोग, रोमन का नंबर चार, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, रोमन का नंबर पाँच, अनिवार्य औषधियां एवं टीका द्रव्यों की व्यवस्था, रोमन का नंबर छः, समुचित प्रशिक्षण तथा सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में अनुसंधान, संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं मातृत्व तथा बाल कल्याण सेवाओं की वृद्धि पर अधिक बल दिया गया है, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के अध्ययन प्रोग्रामों में सम्मिलित है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन, तपेदिक नियंत्रण तथा दृष्टिहीनता के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय प्रोग्राम संक्रामक रोग, देश में कुल रुग्णता एवं मृत्यु के दो तिहाई से अधिक मामलों का कारण है, उनके नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के द्वारा व्यापक स्तर पर अच्छी देखभाल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण के मामले में मुख्य उद्देश्य कुष्ठ रोगियों की शीघ्र पहचान करना तथा उनका आवासीय उपचार करना सम्मिलित है, दृष्टिहीनता की रोकथाम के लिए नेत्र स्वास्थ्य देखभाल में लोगों को शिक्षित किया जाता है एवं चलती फिरती यूनिटों, नेत्र शिविरों एवं स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से नेत्र देखभाल सेवा प्रदान की जा रही है, देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का जाल बिछा हुआ है। पृष्ठ संख्या 513, निम्नलिखित तालिका में सातवीं योजना के लक्ष्यों तथा इसकी अवधि की समाप्ति पर संभावित उपलब्धियों को दर्शाया गया है। लक्ष्य एवं उपलब्धियां, टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स, प्रोग्राम कुल आवश्यकता 1/4/1985 को स्थिति, 1985-86 में उपलब्धि, 1986-87 में उपलब्धि, 1/4/1987 की स्थिति, सातवीं योजना के लक्ष्य 31 मार्च 1990 को संभावित उपलब्धि, नंबर एक उपकेंद्र 1,37,000, 84,588, 6,771, 8,766, 8,671, 10,31,000, 54,100%, नंबर दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 23,000, 10,796, 1,445, 1,554, 1,157, 13,893, 12,100%, नंबर तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 5,417, 725, 233, 278, 272, 1,230, 1,553, 40%, टीकाकरण प्रोग्राम इम्यूनिएशन प्रोग्राम, भारत में बाल मृत्यु एवं रोगों का मुख्य कारण संक्रामक रोग हैं, जिनमें से अनेक को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है, इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु टीकाकरण प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई है, मिशन के अधीन अनुसंधान एवं विकास से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित जनसंख्या को वास्तविक सेवा प्रदान करने तक की गतिविधियां सम्मिलित हैं, सामान्य बाल रोग हैं गलघोंटू, टेटनेस, पोलियो, टीवी, खसरा, टाइफाइड, जिनके नियंत्रण हेतु टीकाकरण प्रोग्राम चलाया जा रहा है, 1990 तक 100% गर्भवती महिलाओं को टेटनेस के दो टीके तथा 80% शिशुओं को DPT, पोलियो, BCO एवं खसरा के टीके लगा देने के लक्ष्य हैं, दो उपमिशन भी स्थापित किए गए हैं, एक टीकाकरण एवं रोग अवरोधन हेतु तथा द्वितीय टीका द्रव्यों के उत्पादन एवं नए तथा बेहतर टीका द्रव्यों के बारे में अनुसंधान एवं उनके विकास हेतु, वर्ष 1987-88 तक 142 जिलों एवं 106 मेडिकल कॉलेजों को, जहां इन रोगों का अधिक प्रकोप है, को आच्छादित कर लिया गया था। 1988-89 में 120 अन्य ऐसे जिलों की पहचान की गई थी तथा शेष अन्य जिलों को 1989-90 में आच्छादित कर लिया जाना था। स्वच्छता सैनिटेशन। समुचित स्वच्छता का अभाव ग्रामीण जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता तथा महिलाओं के सम्मान एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला एक तत्व है। अनुमान लगाया गया है कि छठी योजना के अंत तक 56 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या में केवल 40 लाख का स्वच्छता सुविधाएं प्राप्त थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जनसंख्या के 25% भाग को स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के लिए निर्धारित उद्देश्यों के समरूप हैं। स्वच्छता सुविधाएं राज्य सेक्टर में न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम के अधीन प्रदान की जाती हैं। जनवरी 1986 से स्वच्छ शौचालयों का निर्माण NREP, RLEGP एवं इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कराया गया। 1986-87 में एक केंद्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता प्रोग्राम आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या एवं अन्य को ऐसी सुविधाएं पहुंचाना है। इस स्कीम के अंतर्गत व्यय 50:50 के अनुपात में केंद्र एवं राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। प्रोग्राम की समीक्षा से पता चलता है कि 25% लक्ष्य को प्राप्त संभव नहीं है, इसे 5% करना होगा। ग्रामीण स्वच्छता के अंतर्गत अन्य प्रोग्रामों की भी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इस समस्या के प्रति समन्वित उपागम अपनाया जा सके। इसके अतिरिक्त इस परियोजना की प्रबोधन प्रणाली को भी परिष्कृत करने के लिए पग उठाए जाने चाहिए। पृष्ठ संख्या 514, विकलांगों का पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप्ड। इस प्रोग्राम में सम्मिलित हैं रोमन का नंबर 1, विकलांग व्यक्तियों को सहायकों एवं यंत्रों के क्रय विक्रय करने हेतु सहायता, रोमन का नंबर 2, विकलांगों का शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्तियां, रोमन का नंबर 3, विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, उनके प्रशिक्षण एवं पुनर्वास कार्य में संलग्न स्वयंसेवी संगठनों को सहायता, रोमन का नंबर 4, सार्वजनिक सेक्टर में विकलांगों के लिए सेवाओं में आरक्षण। विकलांग जनसंख्या की विविध समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न संस्थान यथा राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद, अली यावर जंग विकलांग संस्थान बम्बई स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के विकलांगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने, उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी के लाभ उपलब्ध कराने एवं कम मूल्य वाले सहायकों एवं यंत्रों का विकास करने हेतु प्रौद्योगिकी विकास परियोजना मिशन प्रणाली की स्थापना कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई है। विकलांगों को रोजगार दिलाने हेतु सामान्य रोजगार कार्यालयों में विशेष कोष्ठ एवं विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामान्य विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा तथा गंभीर विकलांगों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया है। नंबर 9, दो बच्चे आदर्श, टू चाइल्ड नॉर्म। हमारे सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं में परिवार कल्याण प्रोग्राम का महत्व सुस्पष्ट है तथा उत्तरदायी पितृ भावना का विकास दो बच्चों वाले परिवार के आदर्श की अवधारणा की सफलता के लिए आवश्यक है। परिवार नियोजन सेवाएं संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के अंग रूप में प्रदान की जाती हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जन्म दर 27 प्रति हजार जनसंख्या, मृत्यु दर 10 प्रति हजार जनसंख्या एवं दंपत्ति संरक्षण दर 42% 1989-90 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। परिवार कल्याण रणनीति में सम्मिलित है स्वास्थ्य, बाल देखभाल, महिलाओं की स्थिति एवं उन्हें रोजगार, साक्षरता, शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास। इसमें प्रोग्राम को बहुआयामी बनाने, अंतर अनुशासनीय उपागम अपनाने तथा सभी प्रासंगिक विकास एजेंसियों को समेकित जाल को बिछाने एवं प्रोग्राम को सच्चा स्वैच्छिक जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया जाता है। पृष्ठ संख्या 515। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 31 मिलियन नसबंदियों, 21.25 मिलियन IUD प्रवेश तथा निरोधमाला प्रयोगकर्ताओं की संख्या 14.50 मिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 1986-87 के दौरान परिवार नियोजन की सभी विधियों के प्राप्तकर्ताओं की संख्या 20.43 मिलियन हो गई थी। 1986-87 वर्ष में 5.03 मिलियन नसबंदी, 3.94 मिलियन IUD प्रवेश एवं 11.6 मिलियन निरोध माल प्रयोगकर्ताओं की उपलब्धि बतलाई गई, जबकि नसबंदी का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। IUD एवं निरोध माल के प्रयोगकर्ताओं की संख्या में अधिक थी। मातृ एवं बाल कल्याण प्रोग्राम का सन 2000 तक शिशु मृत्यु दर को 60 से नीचे लाने के उद्देश्य को गतिशील बनाया जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS इस प्रोग्राम के अधीन शिशुओं एवं पूर्व स्कूली बच्चों के उचित शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए एकमुश्त समेकित स्वास्थ्य, पोषाहार एवं शैक्षिक सेवाओं की व्यवस्था की गई है। इस प्रोग्राम के लाभभोक्ता 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं एवं दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं। समेकित बाल विकास सेवा परियोजना की और स्थिति में जनजातीय विकास मंडलों, अनुसूचित जातियों की पर्याप्त जनसंख्या वाले ग्रामीण खंडों, सूखाग्रस्त क्षेत्रों, अन्य पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों एवं बड़े नगरों में गंदी बस्ती वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। इन सेवाओं को प्रदान करने हेतु मुख्य केंद्र आंगनबाड़ी है, जिसका एक अवैतनिक कार्यकर्ता होता है। एक आंगनबाड़ी सामान्यतया 1000 ग्रामीण नगरीय जनसंख्या एवं जनजातीय क्षेत्र में 700 की सेवा करती है। 1989-90 में केंद्रीय प्रायोजित एवं राज्य सेक्टर ICDS परियोजनाओं की संख्या क्रमशः 2286 एवं 202 थी, अर्थात कुल 2488। शिक्षा का प्रसार एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 सभी विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के सापेक्षतया उत्तम प्रकार की शिक्षा दिलाने का विचार रखती है। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति है। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है सभी स्तरों पर शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को संशोधित करना, ताकि शिक्षा के स्तर में उन्नति हो एवं सामाजिक शिक्षा सामाजिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विकास का शक्तिशाली संयंत्र बन सके। इसके अतिरिक्त इस नीति में 15 वर्ष से 35 वर्ष की आयु वर्ग के व्यापक निरक्षरता को समाप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसमें साक्षरता प्रोग्राम को व्यवहारिक सूचना एवं शिक्षार्थियों की दैनिक आवश्यकताओं से प्रासंगिक कौशल के साथ संयुक्त करके पूर्ण बनाने को भी लक्षित किया गया है। इस संबंध में आरंभित प्रोग्राम हैं प्रत्येक आबादी, जिसकी जनसंख्या 3000 है, पर्वतीय, मरुस्थलीय एवं जनजातीय क्षेत्रों में 200 है, में एक प्राथमिक विद्यालय होगा। रोमन का नंबर 2, प्रवेश लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रवेश अभियान चलाया जाएगा। पृष्ठ संख्या 516। रोमन का नंबर 3, बालिकाओं, कमजोर वर्गों एवं अनुसूचित जातियों जनजातियों के बच्चों को अभिप्रेरित करने हेतु व्यापक उत्प्रेरक प्रणाली एवं समर्थन सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी। रोमन का नंबर 4, स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों, अप्रवेशित एवं कार्यरत बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली गठित की जाएगी, जिसमें पर्याप्त नयनीयता, प्रासंगिक पाठ्यक्रम एवं विविधता तथा शिक्षण क्रियाएं हों। रोमन का नंबर 5, प्रत्येक स्कूल को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं तथा शिक्षण सामग्री, न्यूनतम अनिवार्य आवास तथा कम से कम 2 शिक्षक देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन आरंभ किया गया है। रोमन का नंबर 6, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को गहन बनाया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजक, राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं नेहरू युवा केंद्रों को साक्षरता प्रोग्राम में संलग्न किया गया है। जन शिक्षा नीलामय को स्थापित किया है, जो 90 साक्षरों एवं स्कूल छोड़ देने वालों को शिक्षा प्रदान करेंगे। श्रमिक विद्यापीठों को व्यावसायिक कौशल एवं तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने हेतु सशक्त किया जाएगा। वर्तमान ग्रामीण प्रकारात्मक साक्षरता को नया रूप दिया जाएगा, जिसमें महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कार्मिकों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाएगा। बोली जाने वाली भाषा का आर्थिक उपयोग किया जाएगा तथा साक्षरता के बाद भी निरंतर संपर्क बनाया जाएगा। निरक्षरता उन्मूलन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई है, जो सभी उपलब्ध प्रौद्योगिकियों एक उन्नत शैक्षिक निवेशों के समर्थन से शिक्षक एवं सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, सुगम एवं तीव्र बनाने एवं शिक्षा ग्रहण पर्यावरण को अधिक आकर्षण बनाने का प्रयास करेगा। नंबर 11, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को न्याय। जस्टिस टू शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 16% है एवं उन्हें सामान्य सामाजिक भेदभाव एवं आर्थिक वचन से पीड़ित हैं। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8% है एवं यद्यपि वे सामाजिक आर्थिक प्रगति से विभिन्न स्तरों पर हैं, उन्हें अकेलेपन के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतएव देश के सम्मुख लक्ष्य इन भागों के समान स्तर पर आ सकें, उनके हितों की रक्षा के लिए तथा उनकी सामाजिक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने हेतु संविधान में अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अभ्यास अथवा उनका प्रचार करने के लिए व्यक्ति को दंड की व्यवस्था है। इसके लिए विशेष पुलिस कोष्ठ दल, विशेष अदालतें एवं अभियोजक अधिकारी स्थापित किए गए हैं। अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु प्रचार एवं अन्य उपायों को भी आरंभ किया गया है। 18 राज्यों, संघ प्रदेशों में सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों की समितियां नागरिक अधिकार संरक्षण कानून के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने एवं इसकी समीक्षा करने के लिए स्थापित की गई हैं। पृष्ठ संख्या 517। नई शिक्षा नीति 1986 में अनुसूचित जातियों जनजातियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने एवं उन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने का उल्लेख किया गया है। मैट्रिकोत्तर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति स्कीम केंद्रित प्रायोजित स्कीम है, जिसका 100% व्यय केंद्र द्वारा वहन किया जाता है। एक उच्च स्तरीय समिति इस स्कीम की क्रिया की समीक्षा करती है। अनुसूचित जातियों की कन्याओं को छात्रावास सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र राज्य सरकारों को ऐसे छात्रावासों के निर्माण हेतु 50:50 के आधार पर सहायता प्रदान करता है। विभिन्न सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों की सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से पूर्व प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं, जहां अनुसूचित जातियों जनजातियों के प्रत्याशियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि सेवाओं में उनके लिए आरक्षित कोटे का पूरा भाग मिल सके। देश में 21 अनुसूचित जाति विकास निगम हैं, जो अनुसूचित जाति परिवारों एवं वित्तीय संस्थाओं के मध्य ऋण संबंधी स्कीमों के बारे में संपर्क स्थापित कराते हैं। वे उनकी ओर से गारंटी देते हैं एवं मार्जिन मनी की सहायता देते हैं। इन जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों में 20 राज्यों एवं 4 संघ प्रदेशों में, जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या काफ़ी अधिक है, विशेष कंपोनेंट प्लान की रणनीति अपनाई गई है। यह प्लान किसी विशेष विशिष्ट स्कीम के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, अपितु इसमें अनुसूचित जातियों के पूर्ण विकास, विशेषतया आर्थिक विकास की व्यवस्था होती है। विशेष बल पशुपालन, कृषि एवं ग्रामीण एवं उद्योग को बल दिया गया है। यह अनुदान राज्य योजनाओं में आवंटित धन के अतिरिक्त है, जो पूरक कार्य में कार्य करता है। यह विशेष केंद्रीय सहायता का 50% भाग है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या एवं सापेक्ष पिछड़ेपन के आधार पर शेष 50% प्रयास आधारित मापदंड के आधार पर दिया जाता है। हरिजनों की मुक्ति के लिए वर्तमान शुष्क शौचालयों को पानी डालकर फ्लश वाले शौचालयों में परिवर्तित किए जाने का प्रोग्राम आरंभ किया गया है, तथा बेरोजगार हरिजनों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत राज्य सरकारों को संपूर्ण उपागम के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक 116 चयनित कस्बों में इस प्रोग्राम को आरंभ किया गया है, जिसमें से 25 कस्बों को पूर्णतया हरिजन मुक्त बना दिया गया है एवं 4000 बेरोजगार हरिजनों को मार्च 1987 तक विभिन्न रोजगारों में पुनर्वासित कर दिया गया था। आवास एवं नगर विकास निगम भी कम लागत शौचालय परियोजनाओं के लिए 50% तक की वित्तीय सहायता देता है। जनजातीय उपयोजना 17 राज्यों एवं 2 संघ प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। इस उपयोजना उपागम में 184 समेकित जनजातीय विकास परियोजना, 282 जनजातीय केंद्रीकरण क्षेत्र एवं 73 आदिवासी जनजातीय समूह परियोजना सम्मिलित हैं। पृष्ठ संख्या 518। जनजातीय उपयोजना प्रोग्रामों के वित्तीय में 5 स्रोत हैं: राज्य योजनाएं, केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाएं, विशेष केंद्रीय प्रायोजित स्कीम, विशेष केंद्रीय सहायता एवं संस्थागत वित्त। अनुसूचित जनजातियों के विकास की 3 केंद्रीय प्रायोजित प्रोग्राम हैं। रोमन का नंबर 1, जनजातीय कन्याओं के लिए छात्रावासों का निर्माण। रोमन का नंबर 2, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण। तथा रोमन का नंबर 3, स्वयंसेवी संगठनों को सहायता। 1 केंद्रीय जनजातीय अनुसंधान सलाहकार परिषद की भी स्थापना की गई है, जिसका चेयरमैन उपमंत्री कल्याण मंत्रालय है। जनजातीय सहकारी विपणन को भी पंजीकृत किया गया है, जो जनजातियों को उनके उत्पादन का अच्छा मूल्य दिलाने में सहायता करता है, ताकि इन परिवारों की आय में वृद्धि हो। सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो ने निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख परियोजनाओं के कारण विस्थापित जनजातीय लोगों को उचित पुनर्वास हेतु आवश्यक उपाय किए गए हैं। उपमंत्री कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति इस दिशा में प्रगति की समीक्षा करती है।